समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, अ हार्टफेल्ट हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी टू ऑल आवर लिसनर्स। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM। हियर दिस परिक्रमा इट विल कंसिस्ट ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया। ऑल्सो वील बी प्रोवाइडिंग यू रिपोर्ट्स, वेरी लेंथी, नॉट दैट लेंथी, बट यस दे विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो लिसन इन टू दैट। ऑल्सो बिजनेस अपडेट्स आर देयर एंड आर ट्रिब्यूट्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू विद मी शगुन चोपड़ा and Neha Goswami here. First, we'll begin with the news headlines. The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill tabled in the Lok Sabha. Bill seeks to encourage e-sports and online social games, prohibits online money gaming, financial transactions and advertisements.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई वरिष्ठ मंत्री और अन्य सहयोगी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू को चेयर इंटर गवर्नमेंटल कमीशन विद रशिया इन मॉस्को टूडे, ऑल्सो टू एड्रेस इंडिया रशिया बिजनेस फोरम मीटिंग।
हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश में कमी आई। तेलंगाना में लगातार बारिश से कृष्णा और गोदावरी नदियों के जलाशय में पानी का स्तर खतरे के निशान पर। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी।
एंड इन ड्यूरेंट कप फुटबॉल, ईस्ट बंगाल टू फेस डेबिटॉन्स डायमंड हार्बर FC इन द सेमीफाइनल इन कोलकाता। And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, and we will be taking a look at the developments. We usually take a look at the developments which take place at global level also. Today, it's about the national level development, and we will talk about Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025. Well, this particular episode is especially for gaming enthusiasts. Yes, we are aware of that particular soundbite, right?
Bilkul.
Everybody is, I think, kind of someday in our lives, perhaps when we were even children also, we used to listen to it a lot. Also, we have got a topic that is going to make waves in India's gaming scene. Well, the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 has been introduced in the Lok Sabha. And gamers, this one is a game changer and we'll tell you how.
जी, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कदम लेकर आया है। इसका उद्देश्य ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है।
सो लिसनर्स, वील ब्रेक इट डाउन फॉर यू। फर्स्टली, द बिल फोकसेस ऑन प्रमोटिंग ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। Yes, of course. Esports are blowing up globally and India's youth are definitely catching the wave. But what's really interesting is how the bill also puts a big focus on protecting players, especially young people, from harmful online money games. You know, those apps, they actually promise quick cash, but they end up creating financial chaos for families and there have been reports of that happening.
ऐसे जो धोखेबाज खेल होते हैं, इनसे कमाई आपको आसान तो लगती है, लेकिन आखिर में आपको ठगी का शिकार होना पड़ता है। ऐसे खेलों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। खैर, ये विधेयक जो है ये उन प्लेयर्स यानी गेम खेलने वालों को बचाने के लिए है जो इनके जाल में फंस जाते हैं। यह ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है। इससे अब झूठे वादों से ठगे जाने की नौबत नहीं आएगी और इससे बचा जा सकता है।
वेल, ऑल्सो नेहा, बिल This bill outlaws all online betting, satta and gambling jua activities from online fantasy sports to online gambling such as poker, rummy and there are other card games as well and online lotteries as well.
और ये सिर्फ आपके पैसों की सुरक्षा के बारे में नहीं है बल्कि इस विधेयक का उद्देश्य इन खेलों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक और निजता संबंधी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करना भी है
जी.
हम लत से लेकर बड़ी रकम गंवाने के मानसिक तनाव तक हर चीज की बात कर रहे हैं हम जानते हैं कि गेमिंग मजेदार है लेकिन इससे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए
ट्रूली ट्रूली सेड दैट आई एग्री विद यू टोटली नेहा हियर देयर इज अ पोटेंशियल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर हार्म स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक यूथ चिल्ड्रन हु माइट गेट लर्ड इनटू दीज प्रेडेटरी एप्स एंड दैट्स व्हाई दिस बिल इज टेकिंग अ बोल्ड स्टांस
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत वित्तीय नुकसान और यहां तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है इसके अतिरिक्त ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद के वित्त पोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाले मैसेजिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है
And such kind of reports they have come into fore and even I think somebody or the other would have definitely come across such kind of reports of these happening, these things, these incidents. The Online Gaming Authority will oversee and regulate everything from setting clear guidelines to dealing with violators. The bill provides for the creation of an online gaming authority, which will essentially serve as the gatekeeper for the sector. Well, this authority will coordinate policy, strategic development, and ensure regulatory compliance. These three things. They'll also make sure that the industry, it stays fun and safe and fair.
इसलिए यह विधेयक जो है केवल हानिकारक खेलों को ना कहने के बारे में नहीं है बल्कि भारत में गेमिंग को सुरक्षित और विनियमित विकास को बढ़ावा देने के बारे में भी है सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है यह सुनिश्चित करते हुए कि गेमिंग का विकास जारी रहे लेकिन उसके साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसको अवॉइड किया जा सके या एक सुरक्षित संरक्षित और नवाचार संचालित डिजिटल इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है नागरिकों की सुरक्षा करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है
सो इफ यू आर आउट देयर रनिंग एन इलीगल ऑनलाइन मनी गेम आई मस्ट से दैट द लॉ इज कमिंग फॉर यू एंड डू नॉट एक्सपेक्ट टू जस्ट लॉग ऑफ विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज नाउ एंड ऑनेस्टली It's about time. We've seen way too many stories of families and losing everything because of misleading apps that prey on the most vulnerable, that is youth.
बिल्कुल हम अपने आसपास ऐसी स्टोरी सुनकर हम खुद भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि किस तरह इसका लोगों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है इस विधेयक का स्पष्ट ध्यान युवाओं की सुरक्षा पर है यह इस दिशा में बड़ी जीत साबित होगी अब ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं होंगे जो आसानी से प्रभावित होने वाले लोगों को निशाना बनाकर जोखिम भरे दाव के बदले धन कमाने का वादा करते हैं यह विधेयक उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है
एंड टू फोकस Especially on that, we have a report. Listen in.
The bill has a provision of complete ban on offering, operating or facilitating online money games. There is a provision of imprisonment up to 3 years and fine up to 1 crore rupees or both in case of violation of law related to online money gaming. In case of repeat offences, it will attract enhanced penalties including imprisonment up to 3 to 5 years and fine up to 2 crore rupees. The bill will establish a uniform and national level legal framework in the public interest. The bill will protect the country's youth from predatory online real money gaming apps like poker, rummy and other card games which manipulate them through misleading monetary return promises that leave entire families in financial distress. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
Well, there are the positive impacts of this bill. We'll now focus on that as well. We have been doing it, but now even more focus will be there. First one, boost to creative economy. This enhances India's role in global gaming exports, employment and innovation. Second one being empowering youth. And this encourages constructive participation through esports and skill-based digital games.
बिल्कुल और हम तीसरे और चौथे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें सुरक्षित डिजिटल वातावरण परिवारों को ऑनलाइन मनी गेमिंग की हानिकारक प्रथाओं से बचाता है और वैश्विक नेतृत्व भारत को जिम्मेदार गेमिंग नवाचार और डिजिटल नीति निर्माण में अग्रणी बनाता है
Well, listeners, the bill is really about ensuring that gaming remains what it's supposed to be. It should be fun, it should be skill-based, and a safe place for all kinds of players. Whether you're an esports champion or a casual gamer, which I think most of us somehow we are, one day or the other, we like to play some games on our phones as well, or just someone who likes to play a quick game after work, like we do. This bill is setting the stage for a healthier, more responsible gaming culture in India.
बिल्कुल शगुन. और भारत में ई स्पोर्ट्स के बढ़ते चरण के साथ यह तो बस शुरुआत है. हम एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जहां गेमिंग न केवल सुरक्षित होगी बल्कि कई लोगों के लिए एक वैध करियर विकल्प भी होगी. यह विधेयक इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रोत्साहन साबित हो सकता है.
And for this purpose, for the promotion of e-sports, the Ministry of Youth Affairs and Sports will establish a dedicated framework. Well, for online social games, the Ministry of Electronics and IT and the Ministry of Information and Broadcasting will extend support to online games that foster educational and cultural values, skill development and social engagement.
चाहे आप मनोरंजन के लिए खेल रहे हो या अपनी अगली e-sports जीत की योजना बना रहे हो, इसे सुरक्षित, स्मार्ट और कानूनी बनाए रखना याद रखें.
Well, listeners, catch you next time. And as always, game on.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
फर्स्ट लेट्स टेक यू टू कोहिमा. In an initiative to boost agri entrepreneurship and promote scientific farming practices, 19 farmers from Bukha district in Nagaland have embarked on a 10-day exposure cum training program at leading national research institutes in Tamil Nadu and Kerala. The program is being facilitated by the district administration of Bukha in collaboration with the Department of Horticulture, Central Institute of Horticulture, Department of Agriculture, Mission Shakti and Nagaland State Rural Livelihoods Mission. We have a report.
This 10-day exposure-cum-training program for the farmers at the leading national research institutes in Tamil Nadu and Kerala was officially flagged off at the Deputy Commissioner's office in Woka, district of Nagaland on August 19. During the tour, the farmers will undergo specialized training at the ICAR National Research Center for Banana in Tiruchirappalli, Tamil Nadu, and the ICAR Central Tuber Crops Research Center in Thiruvananthapuram, Kerala. The training will focus on advanced production techniques, scientific crop management and value addition in banana and tuber crops. Accompanying the farmers are officials from the district administration, horticulture department, agriculture department and Krishi Vigyan Kendra. This pioneering initiative is expected to have a transformative impact on the farming community by linking local farmers with national level research and innovation. It aims to enhance food security, boost income generation and promote sustainable agricultural practices across Woka district. For Parikrama, Asunyu from Kohima.
अब ओडिशा के की बात होगी. ओडिशा के मलका नगरी जिले की चंपा रासपेदा आदिम दीदाई जनजाति की पहली लड़की है जिन्होंने नीट यूजी 2025 की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. अत्यंत ही पिछड़े जनजातीय समूह से आने वाली चंपा अपने संप्रदाय की पहली डॉक्टर बनेंगी. चंपा की सफलता के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. एक रिपोर्ट.
चंपा रासपेदा तकानगिरी जिले के कोरुकोंडा ब्लॉक के आमलीबेड़ा गांव की रहने वाली है. उनके पिता लक्ष्मू रासपेदा एक साधारण किसान हैं और मां गृहिणी. आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के बावजूद चंपा ने साबित किया कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है. चंपा को आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी लेकिन डॉक्टर बनने का सपना उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा. अपने पूर्व विज्ञान शिक्षक के मार्गदर्शन में उन्होंने बालेश्वर में कोचिंग लेकर नीट की तैयारी जारी रखी और सफलता अर्जित की. दीदाई जनजाति से किसी का भी डॉक्टर बनना इस समुदाय के सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. एक ऐसा तबका जिसने परंपरागत रूप से कृषि खासकर छोटे पैमाने की खेती पर निर्भर है. चंपा नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है. चंपा कहती है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदैव प्रेरणा मिलती है।
मैं बहुत ही गरीब परिवार से आई हूँ, एक आदिम आदिवासी हूँ। मैंने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टरी बनकर समाज की सेवा करूँ, हमारे आदिवासी समाज की और लोगों ने पढ़ाई करके आगे बढ़े। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा ही प्रेरित किया।
चंपा रासपेदा की सफलता ये संदेश देती है कि शिक्षा और संकल्प से समाज के सबसे वंचित तबके से भी नई रोशनी निकल सकती है। देर अंधेर रात के बाद एक नया सवेरा हो सकता है। परिक्रमा के लिए मैं इतिश्री सिंह राठौर।
लिसनर्स, नाउ लेट्स टेक यू टू पुदुचेरी। For generations, the sea has been the heartbeat of coastal life here in Puducherry and its enclave regions like Karaikal. Adding further impetus to this, Karaikal, the coastal enclave of Puducherry, is all set to welcome its first-of-its-kind fisheries processing cluster. This modern hub, coming up under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, promises to give a big boost, to the lives of fishermen and women in the Union Territory. A report.
With a project cost of nearly 349 crore rupees, largely supported by the Union Government, the cluster will bring together modern facilities like cold chains, ice plants, processing units and transport logistics. This means the fish caught in Puducherry's waters can travel further, stay fresher and fetch better prices. For fishermen, it translates into higher income, for consumers, safer and quality seafood. The unique feature is that Karaikal Harbour will be linked with the Puducherry's Thengaitittu Harbour. Together, these two hubs are expected to strengthen the entire fisheries economy of the Union Territory. According to Fisheries Secretary D. Manikandan, the project will not only modernize infrastructure but also create new opportunities for employment, skill training and small businesses, especially for youth and women in coastal villages. The effort will be further strengthened by another scheme, the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samruddhi Saha Yojana. Under this, primary fisheries cooperative societies in Puducherry will receive mentorship, financial assistance and training support from the State Fishermen Cooperative Federation. Together, these initiatives are expected to transform Puducherry into a model for cooperative-led sustainable fisheries development, bringing prosperity to those who depend on the sea for their livelihood. For Parikrama, this is Bipinasna, Akashwani News, Puducherry.
Moving on from Puducherry, in an effort to strengthen availability, accessibility and awareness for rare diseases, FICCI, in collaboration with Niti Aayog, today organized the Rare Diseases Conference 2025 in New Delhi. The conference aims to foster discussions on inclusive solutions and sustained management for rare diseases. We have a report.
The conference aims to spotlight key policy, infrastructure and research challenges while showcasing successful models from India and abroad. It also brings together policymaker and healthcare leaders to explore opportunities for strengthening rare care. Speaking on occasion, Niti Aayog member V.K. Paul asserted that India's pharma sector is advancing rapidly towards Viksit Bharat. He added that Niti Aayog is focused on national scale health outcomes and bridging the cost gap with developed nation to make a real difference.
The team prioritized tyrosinemia, Gaucher's disease, Wilson's disease, Lennox-Gastaut syndrome, PKU, that is phenylketonuria, hyperammonemia and cystic fibrosis. These seven in particular were the ones where small molecules can make a difference significantly. And that is easy. We have a big strength in this area. It is there to be harnessed. We also prioritize spinal muscular atrophy, Duchenne muscular dystrophy, achondroplasia, Pompe's disease, mucopolysaccharidosis and Niemann-Pick's. And alongside this, we prioritized sickle cell disease for a very, very special reasons.
The conference seeks to provide actionable recommendation to guide future strategy and policy for rare diseases management in India. For Parikrama, Jaya Akashwani News, Delhi.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। जी, 134वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल का सामना डायमंड हार्बर एफसी से होगा। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उधर इस टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही डायमंड हार्बर एफसी मोहम्मदन रिपोर्टिंग और जमशेदपुर एफसी को हराकर पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलांग लांजोक एफसी को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
Now we'll give you the business updates. Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains driven by buying across IT pack, Sensex rose 213 points to close at 81,858 and Nifty gained 70 points to settle at 25,051. In the global crude oil market, Brent crude was trading 0.7% up at $66.25 per barrel and WTI crude was also trading over 0.7% up at $62.81 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 19,990 rupees per 10 grams and silver 999 fine was also trading down at 1,11,040 rupees per kilogram when reports last came in.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
In today's episode, we talk about one of the heroes of India's freedom struggle, Undi Veeran, and about the foremost social reform organization, the Brahmo Samaj. Today is the day when a great son of India was martyred in the fight for freedom way back in the year 1771. He was Undi Veeran Pagadai, a one-man army from Tamil Nadu. Undi Veeran was one of the first warriors to rebel against the East India Company. He was born in Sankaran Kovil of Tenkasi district of Tamil Nadu. He was the commander-in-chief of Buli Devan's army, who ruled Tirunelveli area. East India Company acquired the revenue-collecting rights of southern Tamil Nadu from the Nawab of Arcad. Buli Devan and his lieutenant Undi Veeran refused to accept the British domination. Undi Veeran led the army and fought many battles with the British and won them all.
During one of the wars, the East India Company arrested Buli Devan from his fort and beheaded him. Undi Veeran was enthroned as the king. He continued to fight the British and also took care of Buli Devan's family. In all, Undi Veeran fought 11 battles against the East India Company. Finally, on the 20th August 1771, near Manur village of Tirunelveli district, even after being fatally wounded, Undi Veeran led his army to victory against the British. But after the war, the fearless warrior succumbed to injuries. Today, a memorial has been built at Manur, beckoning the coming generations to pause and ponder on the life of the great warrior.
It was on this day in 1828 that the first session of Raja Ram Mohan Roy's Brahmo Samaj was held in Kolkata. Raja Ram Mohan Roy was a pioneer social reformer in India who paved the way for progress in India under British rule. Roy was also an important figure in the Bengal Renaissance movement, often being called the father of the Bengal Renaissance. The Brahmo Samaj is credited with being one of the most important reform movements in India, which led to the foundation of modern India. Brahmo Samaj was a reflection of the Bengal Renaissance. The organization took active participation in social emancipation, which included the abolition of sati, the caste system, child marriage, dowry, and in upliftment of the status of women in society.
Ever since the beginning of a political movement against the British government, leaders had been demanding constitutional reforms. Dadabhai Nauroji had already put forward the idea of Swaraj in the annual session of Congress held at Calcutta in 1906. Also, during the First World War, the Home Rule League movement was gaining momentum throughout the country. To satisfy popular demand, Edwin Montagu, then Secretary of State for India, made a declaration in the British Parliament on this day in 1917, defining the goal of British policies in India. This came to be known as the August Declaration. The August Declaration aimed at increasing association of Indians in administration with a view to the progressive realization of responsible governments in India. The declaration proposed to provide a dominion status to India after the Second World War. However, the leaders in India criticized the reforms as people demanded complete independence and not just a dominion status. The declaration was criticized in a session held at Calcutta in December 1917. Bal Gangadhar Tilak also characterized the reforms as unworthy and disappointing, a sunless dawn. This report, however, became the basis of the Government of India Act 1919, which remained the cornerstone of governance till India's independence in 1947.
आज हम याद कर रहे हैं राजीव गांधी को. आज उनका जन्मदिन है. राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे. उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने शिक्षा, तकनीकी विकास और आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति की.
Well, listeners, today we are also remembering BKS Iyengar. Well, the Indian teacher of yoga, and also he has been author. He has been the founder of the style of yoga as exercise known as Iyengar Yoga. And he has been considered, was considered even one of the foremost yoga gurus in the world. The books that he has authored, they are based on yoga practice and philosophy. Let me name two of them, Light on Yoga and Light on Pranayama.
भारत सरकार ने अयंगर को 1991 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2004 में अयंगर को टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया था।
Well, now let me talk about a musician. I'm talking about a singer. His name is Robert Plant. He has been the lead singer and lyricist of the rock band Led Zeppelin, and he has been from its founding since in the year 1968. Well, he has had a successful solo career as well. Well, he is known for his flamboyant persona, raw stage performances, and his powerful, wide-ranging voice. So, I have specifically selected a classic song, This is Stairway to Heaven. Listen in.
She came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign.
आज हम याद कर रहे हैं ओडिशा साहित्य के महान उपन्यासकार गोपीनाथ मोहंती को. उनकी आज पुण्यतिथि है. 20 अप्रैल 1914 को ओडिशा में जन्मे गोपीनाथ जी ने अपनी कलम से गांव, समाज और आम जनजीवन को आवाज दी. उनके उपन्यासों में मानवीय संवेदनाएं, आदिवासी जीवन और बदलते समाज की सच्चाइयां जीवंत होकर सामने दिखती हैं. माटी मटाला, अमृतर संधानी और दाना पानी जैसे कृतियों ने उन्हें साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाया. साहित्य में योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
Well, listeners, I have found out another musician. Today it's his birth anniversary. I am talking about Philip Paris Lynott. He was an Irish musician and being a songwriter and poet as well. The co-founder, lead vocalist, bassist, primary songwriter for the hard rock band Thin Lizzy. So his basic style was hard rock. He was known for his distinctive pick bass style on the bass and for his imaginative lyrical contributions, including working class tales and numerous characters which he drew from personal influences also. And this particular song that I have chosen, this is known as Old Town Listen In. Also, today, listeners, we are remembering Ghost Thapal. Today, it's his birth anniversary. A pioneer figure in the Indian football, his leadership and sporting spirit, it continues to inspire generations of athletes. Well, he has been the captain of the Indian national team, which was played. This particular team, it played during the 1920s and 1930s. He spent most of his career in Mohun Bagan, and he's regarded as the best Indian defender of all time and best player ever to have played for the century-old club.
20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे रणदीप हुड्डा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. हिंदी सिनेमा में जब भी वर्सेटाइल और पैशनेट एक्टर्स की बात होती है, रणदीप का नाम शीर्ष पर आता है. उनकी पहचान सिर्फ शानदार अभिनय तक सीमित नहीं है, बल्कि किरदारों को असलियत देने के लिए हैरतअंगेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और मेहनत के लिए भी उन्हें खूब सराहा जाता है. कभी 20 किलो वजन घटाना तो कभी 15 किलो बढ़ाना, कभी बाल बढ़ाना तो कभी महीनों तक भूखे रहना. उन्होंने अपने किरदारों के लिए सब कुछ किया. यही समर्पण उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाता है.
Well, this is what we call method acting, right?
बिल्कुल. रणदीप हुड्डा की प्रमुख फिल्मों में सरबजीत हाईवे, स्वतंत्र वीर सावरकर, जाट, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई शामिल है.
कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।